फिर लिटिल ऑफ नहीं 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 वेट 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 क्या लिखा है इंटरनेट पे बॉइलिंग एंड देन मिक्सिंग सो इसको यहाँ पे अरे बाप रे शिट यार स्कूल में थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए थी But no worries. Learning is a constant process. You guys agree with me, na? We will have to find out soon. सुबह से इंटरनेट पे होममेड एक्सप्लोजिव्स बनाने के तरीके ढूंढ रहा हूँ. I must tell you, आप सबके रेगुलर से घर में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पोटेंशियली बॉम्ब बन सकती है. नहीं पता? लाइक दिस द सोप साबुन या ये सेल फोन. वेट आई शो यू दिस वायर विल गो हियर एंड 3, 2 वाओ कैसा लगा था वाका हाँ आई नो इंटेंसिटी बढ़ानी होगी राइट वही कर रहा हूँ वी विल डू इट टुगेदर ओके देयर विल बी फायरवर्क्स कभी किसी पटाखे से हाथ जलाए खाल को चीरते हुए और मांस को काटते हुए जो बारूद अंदर तक जलन पैदा कर देता है उसकी दहक का अंदाजा सिर्फ उसी को हो सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो सावधानी हटी दुर्घटना घटी सावधानी समझते हैं ना लापरवाही नेग्लिजेंस चाहे रिश्ते हो या जिंदगी लापरवाही बेहद खतरनाक होती है आज अपने रिश्ते की लापरवाही के साथ साथ एक हादसा और उससे जुड़ी लापरवाही याद आ रही है Well, you can't neglect my story. You simply can't.
क्राइम की असली कहानियां With Mr. X, an M&M original.
17 दिसंबर 2018, कानपुर सर्द रात में घना कोहरा छाया हुआ था टेम्परेचर वॉज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस सारा शहर अपने घरों में दुबका था कि तभी देर रात पुलिस को बीकनगंज इलाके से एक कॉल आया
हेलो
हेलो हेलो बीकनगंज से बोल रहे हैं साहब सामने वाली फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है जल्दी आइए साहब जल्दी आइए
धुआं निकल रहा है अच्छा आते हैं आते आते हैं रुकिए तो पहुंच रहे हैं
हादसे की खबर सुनकर पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची रात के तकरीबन 2 बज रहे थे इसलिए लोगों का अंदाजा था कि फैक्ट्री खाली है लेकिन थोड़ी ही देर में वहां से धमाकों की आवाज आने लगी और साथ ही फैक्ट्री के अंदर से कुछ लोगों की दर्द भरी चीखें भी बाहर निकलने लगी पुलिस ने गेट तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की लेकिन आग काफी फैल चुकी थी रात के घुप सन्नाटे में अचानक शोर होने लगा कभी सुना है आपने सन्नाटों में बसे शोर को नहीं सुना मैं रोज सुनता हूं अपने इस सो कॉल्ड घर में बट यू नो व्हाट दिस हाउस वॉज नॉट लाइक दिस अर्लियर न जाने क्या हुआ ना ये घर घर रहा और ना मैं लेकिन क्यों आखिर वजह शायद मैं जानता हूं या यूं कहिए कि मैं खुद ही वजह हूं ये जैसे ये बारूद है ना ये मैं भी इसी बारूद जैसा हूं मेरे रिश्तों के हादसे में मैं ही हूं बारूद जिसने रिश्तों को झुलसा दिया ये बारूद जो बनता है बहुत सारी गलतियों से और इसमें पहली गलती होती है लापरवाही हादसे अक्सर लापरवाही में होते हैं जो लगते तो अनप्लान्ड हैं लेकिन जिनकी बुनियाद धीरे धीरे रोजाना बन रही होती है और जब हो जाते हैं तो दुनिया कहती है ओ! आखिर ये कैसे हो गया कुछ ऐसी ही बातें उस रात बीकनगंज के लोग कह रहे थे अचानक रात में फैक्ट्री के अंदर हादसा आखिर कैसे और अंदर मजदूर कैसे हो सकते हैं? वो मजदूर जिनको बचाने की कोशिश करना भी बेकार लग रही थी, क्योंकि आग सब कुछ निगल चुकी थी। जब तक फायर ब्रिगेड आती काफी देर हो चुकी थी, देर लेट, जिसकी वजह से कई लोगों के नाम के आगे लेट लग जाता है। सॉरी, बैड जोक, बट ये देर लेट रियलाइजेशन, रिश्ते भी अक्सर इसी वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लगी दीमक हमें देर से नजर आती है। वो दीमक जो काफी वक्त से धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को काट रही होती है और हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि लापरवाही, याद है ना, पहले लापरवाही और फिर देरी, रिश्तों को झुलसाने का परफेक्ट मिक्सचर। और हाँ, झुलसने से याद आया, कानपुर के बीकनगंज की उस फैक्ट्री में कई लोग झुलसे थे। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पाया, तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। फैक्ट्री में कुछ लोग जल के मरे थे और कुछ बेसमेंट में फंसकर दम घुटने की वजह से। हर तरफ आंखों में चुभने वाला धुआं। 32 लोग जिन्हें कहीं भागने का रास्ता ही नहीं मिला। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह साफ था कि धमाके पटाखे बनाने के मसाले में आग लगने की वजह से हुए थे, पर यह कैसे पॉसिबल था? पटाखे की फैक्ट्री तो हमेशा शहर की आबादी से दूर बनाई जाती है, और यह हादसा एक घनी आबादी वाले एरिया में हुआ था। पुलिस के सामने कुछ झुलसे हुए सवाल थे, जिनके जवाब वहीं राख में दफन हो गए। हादसा इतना बड़ा था कि पुलिस के आला अधिकारियों को भी अपने गरम कंबल से निकलकर मौकाए वारदात पे आना पड़ा।
साहब, ये फैक्ट्री, ये फर्टिलाइजर प्लांट है, मालिक का नाम सलीम खान। आग और धुआं देख के लोकल जनता ने पुलिस को कॉल किया, और फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही विस्फोट हुए साहब, वो भी पटाखे के मसाले वाले। आग और धुआं चारों तरफ फैल गया था, लेकिन फर्टिलाइजर प्लांट में पटाखे का सामान क्यों रखा था, उसकी जांच कर रहे हैं साहब।
पुलिस के लिए ये एक नई पहेली थी, एक फर्टिलाइजर प्लांट में पटाखे का बारूद कैसे आया, और इतनी बड़ी आबादी वाले एरिया में फर्टिलाइजर प्लांट का लाइसेंस कैसे इशू हुआ। पुलिस ने जब फैक्ट्री के मालिक सलीम खान से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उसका फोन ऑफ था। घर पे दबिश की गई तो जवाब मिला,
हाँ जी, सलीम खान यहीं रहता है।
सलीम भाई, वो तो बाहर गए हुए, दो दिनों से बाहर है। वो किसी काम धंधे के सिलसिले में बाहर गए हैं।
अच्छा जी, पर हमने तो आपसे पूछा ही नहीं कि कितने दिनों से बाहर है। वैसे ये घर की पार्किंग वाली जगह पे गिरे तेल को देख के लगता है कि बड़ी जल्दी में कार निकाली गई है यहाँ से, वो भी थोड़े ही टाइम पहले।
बात साफ थी, फैक्ट्री ओनर सलीम खान फरार हो गया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग चुका था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, यू नो, ये रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट है, पर जब जिम्मेदारी एक्सपायर होकर गैर जिम्मेदारी में बदल जाती है तो वो एक टॉक्सिक केमिकल बन जाती है। आप लोग कभी भागे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? I can teach you how to run away from responsibility, from truth, from your loved ones. मैं मुझसे सीख सकते हैं आप? आप भागते हैं फिर एक दिन अकेले रह जाते हैं, see? Just like me. अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो आज यहाँ होती नहीं रहता। पर क्यों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है? क्योंकि वो कोई गलती कर रहा होता है जिसकी ओनरशिप लेने की उसमें हिम्मत नहीं होती। सलीम खान ने भी शायद यही किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्री से मिले डॉक्यूमेंट से ये बात साफ थी कि फर्टिलाइजर प्लांट का लाइसेंस किसी और एड्रेस पर रिन्यू किया गया था। क्योंकि 6 साल में आबादी बढ़ने के बाद प्लांट को वहां से मूव करने का ऑर्डर पास हुआ था। जाहिर सी बात थी कि सलीम खान ने काफी सारे पैसों से कई सरकारी कर्मचारियों की जेब का वजन बढ़ाया था। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए एक अलग इंक्वायरी की डिमांड भी पुलिस रख चुकी थी, क्योंकि इसी लाइसेंस के बेसिस पे फैक्ट्री में केमिकल्स खरीदे गए। थोड़ी और छानबीन हुई तो कई डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनसे ये भी क्लियर हुआ कि 2 दिन पहले ही काफी बड़ी क्वांटिटी में फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे बनाने की केमिकल्स खरीदे गए थे, मगर फैक्ट्री कंपाउंड में कहीं भी पटाखे बनाने के इंग्रेडिएंट्स पोटेशियम एल्यूमिनियम पाउडर नहीं मिले। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट से इन्वेस्टिगेशन कराई तो उन्होंने बताया,
हाँ डॉक्टर साहब, क्या आया फोरेंसिक रिपोर्ट में?
हवलदार साहब, डॉक्यूमेंट्स में दर्ज एक्सप्लोसिव्स की क्वांटिटी और एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी को स्टडी करने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये कंप्लीट स्टॉक नहीं था, अदरवाइज ब्लास्ट की इंटेंसिटी और ज्यादा होती। देयर शुड बी मोर स्टॉक।
फर्टिलाइजर प्लांट में फायर क्रैकर के इंग्रेडिएंट्स क्यों लाए गए? देर रात तक मजदूरों से क्यों काम करवाया जा रहा था? और ये कंप्लीट स्टॉक अगर नहीं था तो बाकी का स्टॉक कहां है? सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक्सप्लोसिव्स के स्टॉक को या तो कहीं और रखा गया या फिर उसी रात कहीं शिफ्ट किया गया, यानी कि यह मुमकिन था कि सलीम खान हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद था। पुलिस के लिए यह एक्सप्लोसिव मटेरियल और सलीम खान दोनों को लोकेट करना बेहद जरूरी था। पुलिस अलग अलग टीम्स बना के जगह जगह दबिश दे रही थी, मगर सलीम खान का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसके घर और गोदाम पर भी रेड मारी गई, मगर कहीं कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला। दूसरी तरफ हादसे में मरे हुए लोगों की शिनाख्त का काम चालू था। कुछ के चेहरे ऐसे झुलस चुके थे कि पहचानना मुश्किल था, तो बाकियों के पास कोई पहचान पत्र नहीं। मजदूर का ना कोई नाम होता है ना पहचान, तो बस पेट पालने के लिए काम करता है और काम करते हुए एक दिन मर जाता है। और मौत की वजह? वो मजदूर था, इतना काफी नहीं है क्या? उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर उनकी लाइफ की कोई वैल्यू होती तो फैक्ट्री में सेफ्टी इक्विपमेंट जरूर लगाए जाते। पैसे का लालच देकर उनको रात भर काम ना करवाया जाता। बात वही थी कि उनकी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया गया, जैसे कि अक्सर रिश्तों में भी होता है। रिश्तों को झुलसाने का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने की गलती। ओके, जब तक कोई हासिल नहीं होता तब तक उसको पाने की कोशिश में बड़ा दम होता है, और जब वो हासिल हो जाता है तो कोशिशें भी बेदम हो जाती हैं। फिर उन रिश्तों को ऐसे ही झुलसने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये मेरी तन्हाई, ये मेरा अकेलापन, ये मेरी सजा है। एक अच्छे खासे रिश्ते को झुलसाने की सजा, एक भरे पूरे घर को चला के रोक कर देने की सजा। पर पता है क्या, मुझे ये सजा काफी नहीं लगती, इसलिए आज ये होममेड एक्सप्लोसिव से घर को सजा रहा हूं। You know what I mean. आज फिर अपने अंत को सुनिश्चित करने की कोशिश है। The end, as you call it. Mr. X will be no more, journey over. आज कहानी यहीं पे खत्म। नहीं, आप घबराइए मत, मेरी कहानी आपकी कहानी खत्म होने के बाद ही खत्म होगी। सो रिलैक्स। कानपुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया। फैक्ट्री में सेफ्टी नॉर्म्स की जम के धज्जियां उड़ाई गई थी। प्रोब में करप्शन का एक ऐसा नेक्सस निकल के सामने आया जिसमें कई डिपार्टमेंट्स की मिलीभगत थी। रिश्वत की ग्रीस से चलने वाले सिस्टम में किसी की जान की इंपॉर्टेंस नहीं थी, इन बेनाम मजदूरों की तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ आसपास वालों से पता चला कि ये मजदूर लोकल नहीं थे, इसलिए इनके घर वालों का भी पता नहीं चल पा रहा था। ना ही ये मजदूर रजिस्टर्ड वर्कर्स थे, ना ही फैक्ट्री पेरोल पे थे, और ना ही फैक्ट्री में उनके एम्प्लॉयमेंट का कोई फॉर्मल रिकॉर्ड था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती। मजदूर डेली काम करता है और दिहाड़ी लेकर चला जाता है, पर वो कहीं से तो आता होगा और कहीं तो वापस भी जाता होगा। फैक्ट्री कंपाउंड में उन मजदूरों के रहने का कोई सबूत नहीं मिला था, यानी कि वो जरूर किसी दूसरी जगह से आते होंगे और फिर वहां वापस जाते होंगे। इस केस में अब तक ना तो कोई सॉलिड सबूत सामने आया था और ना ही सलीम खान का कुछ पता चला था। पुलिस ने जब उन मजदूरों की बॉडी से मिले झुलसे हुए कपड़े और बचे कुछ सामान की तलाशी ली, तो उसमें से ज्यादातर लोगों के पास एक चीज कॉमन मिली, संगीत टॉकी सिनेमा हॉल के टिकट्स। उनमें से कईयों ने उसी दिन वहां मिथुन दा की एक पुरानी फिल्म देखी थी। शो टाइम दोपहर का था। पटाखे बनाने का काम तो वैसे भी चोरी छिपे अंधेरे में ही चल रहा था। पुलिस की थ्योरी यही थी कि वो नाइट शिफ्ट में काम करने के बाद अर्ली मॉर्निंग सोने जाते होंगे और दोपहर में ही फिल्म देखने का टाइम होता होगा, तो मुमकिन है कि उनके रहने की जगह भी संगीत टॉकीज के आसपास ही हो। पुलिस ने संगीत टॉकीज के आसपास पूछताछ करना शुरू किया। एक बिरयानी वाले के ठेले पे फोटोज दिखाकर एक जानकारी मिली।
हाँ भाई, इस आदमी को देखा है कभी पहले?
जनाब, ये वाला आता था हमसे बिरयानी लेने। सस्ती रखते हैं ना सर जी, तो दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले, इन्हीं सबसे धंधा चल रहा अपना। ये बंदा वो बस्ती के पीछे जो चमड़े का गोदाम है ना सर, वहीं कहीं से आता था। और बोल चाल में हाँ, बिहार का लगता था जनाब।
थोड़ी और पूछताछ से यह पता चल गया कि उस लेदर गोदाम में कुछ लोग रहते थे जो पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आए थे। पुलिस ने बिना वक्त गवाए गोदाम का गेट तोड़ा और कौन? ये दरवाजा कैसे? कौन है?
तुम नहीं हो, ये सिर्फ मेरा वहम है, मेरा दिमाग मुझे यूं।
मैं ही हूँ। दरवाजे का लॉक मुझे लगा था बदल दिया होगा। ये टेबल पर ये सब क्या है? दीज वायर्स, केमिकल्स, कर क्या रहे हो?
मैं वो धमाका वो कानपुर की फैक्ट्री, बॉम्ब बना के कहानी खत्म, 32 मजदूर और तुम वो तो
ओके रिलैक्स। तुम कहानी सुना रहे थे? किसको? रिकॉर्डर दोबारा यूज करने लगे? डोंट टेल मी तुमने फिर से वो सब पढ़ना शुरू कर दिया है। फैक्ट्री कानपुर एक्सप्लोजन, इज दिस अबाउट बेकनगंज एंड सलीम खान?
यस। हाँ, निवेदिता वही, वो 32 मजदूर मर गए, जल के धुएं से मर गए। मैं उनकी कहानी में एक मिनट निवेदिता, जस्ट अ मिनट, नीड टू कंप्लीट द स्टोरी प्लीज।
फॉर गॉड सेक प्लीज।
नो प्लीज। देखो, अगर तुम सच हो और मेरा वहम नहीं हो तो मेरे कहानी पूरा करने तक यही मेरे सामने मौजूद रहोगी, ओके? यस। हाँ, तो पुलिस उस फैक्ट्री ओनर, हाँ, सलीम खान को ढूंढते हुए शहर के ऑलमोस्ट बाहर वाली एक बस्ती के किनारे चमड़े के गोदाम में पहुंची और उसका गेट तोड़ा, जहां पुलिस को दो चीजें मिली। एक उन केमिकल्स का स्टॉक जो आग लगने के बाद से फर्टिलाइजर प्लांट से गायब था, और दूसरा खुद सलीम खान। Yes, जो हादसे के बाद अपने उस अनरजिस्टर्ड गोदाम में छुपा हुआ था। तुम्हें पता है निवेदिता उसने क्या कहा? तुम्हें पता है?
Yes, I know.
शादियों का सीजन चल रहा है इंस्पेक्टर, पटाखों की डिमांड जोरों पर है। ये सारे मजदूर बिहार से आए थे, इनको काम चाहिए था। मैंने इन्हें रहने की जगह थी, काम दिया सर जी। फर्टिलाइजर का धंधा सिर्फ नुकसान दे रहा था, इसलिए पटाखे बनाने का सारा सामान लाया। देर रात ये मजदूर वहां काम करते, पर उस रात पता नहीं कैसे आग लग गई। मैं वहीं था, फैक्ट्री का एग्जिट सामान से ब्लॉक था, और जब मजदूरों ने भागने की कोशिश की तो मैंने पहले उन्हें ये सारा केमिकल का स्टॉक बाहर निकालने को कहा, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता सर जी, बहुत बड़ा नुकसान। मुझे लगा थोड़े दिन की बात है और मामला दबते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो
लेकिन करप्शन और लापरवाही का सारा खेल सामने आ गया। रूल्स की धज्जियां उड़ाने वाले हिरासत में लिए गए, अपनी दौलत से केस को रफा दफा करने की कोशिश कर ही नहीं पाया सलीम खान। वो चाहता तो उस दिन कुछ जाने बच जाती, लेकिन उसने फायर ब्रिगेड बुलाने के बजाय अपना स्टॉक बचाना ज्यादा जरूरी समझा। ऐसे कई हादसे हमारे आसपास अक्सर होते हैं जहां मासूमों की जान करप्शन और लापरवाही से जाती है, चाहे वो दिल्ली का वो सिनेमा हॉल हो या भोपाल में हुई गैस फैक्ट्री की लीक। ये हादसे साबित करते हैं कि हमारे यहां जान की कीमत इतनी कम हो सकती है। ना हम जिंदगी की कद्र करते हैं और ना ही रिश्तों की। एक मिनट, तुम अभी भी दिख रही हो, इसका मतलब तुम यहाँ हो सच में, यहाँ मिस्टर एक्स के घर में।
हाँ मैं यही हूँ। और ये मिस्टर एक्स का घर, ये मिस्टर एक्स कौन है बोलो। बादल
अरसे बाद खुद का नाम सुना।